बात बताई थी कि जो हमारा अनुभव है ना, अनुभव हम जो देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं ठीक तरह से, उस समझ का आदर करें तो हमारी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, परंतु विशेष गौरव करके दृष्टि नहीं डालते हैं। जैसे हमारी एक स्वतः वृत्ति रहेगी, हम जी रहे हैं, स्वाभाविक हम जी रहे हैं, ऐसी वृत्ति है। पर विचार कर देखा जाए तो आप बुरा न मानना, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, ये वास्तविकता है। जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी, क्या आज उतनी उम्र है? कितना दिन है इसका तो पता नहीं, परंतु जितने दिन आ गए उतनी उम्र तो खत्म हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगाड़ी जीना कितना होगा इसका कुछ पता नहीं, परंतु जितने जी गए आज दिन तक उतनी तो आयु समाप्त हो ही गई। आयु समाप्त हो गई इसमें तो फिर भी आप बुरा नहीं मानेंगे, इतने तो मर ही गए तो बुरा मानेंगे। बात सच्ची है एकदम। 80-90 वर्ष हमारी उम्र हो और 50 वर्ष आ जाए तो 90 वर्ष की उम्र में से 50 वर्ष तो खत्म ही हो गए ना। बोलो तो हम जी रहे हैं ये कहां है? थोड़ा सोचो तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि भी मर रहे हैं। हमारे से संसार वियुक्त हो रहा है, शरीर भी हमारे से वियुक्त हो रहा है, सब संसार से हम वियुक्त हो रहे हैं, हमारे से संसार वियुक्त हो रहा है। इसमें कोई संदेह है क्या? एक क्षण में हमारा वियोग हो रहा संसार से और फिर लेने की इच्छा करते हैं, और आ जाए, धन भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, मान भी आ जाए, निरोगता भी आ जाए, और भी जी जाए। इतनी इतनी जो दृष्टि है, थोड़ी सी दृष्टि इधर करें, भैया जी कह रहे हैं आप धन कमाओ, काम करो, औषधि आदि का सेवन करो, शरीर की रक्षा करो, ठीक बात है, इसमें कोई मना नहीं, पर धारणा तो ये होनी चाहिए नहीं भाई, ये तो हम जा रहे हैं, शरीर तो जा रहा है, संसार से बीत रहा है, इतनी अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और वो समझ चिंतन करने की नहीं है, हम कोई भी बात कहते हैं तो भाई बहन समझते हैं कि ये अब भजन करना है, अब अभ्यास करना है, अब चिंतन करना है, तो अभ्यास चिंतन भी अच्छा है पर ये अभ्यास नहीं है, ये तो केवल समझ लेना मात्र है और समझी हुई बात को मान लेना है। जैसे हम आज बंबई में हैं, इस बात की माला फेरते हैं क्या? एक माला भी जपी है क्या आपने? बंबई में है, बंबई में है, बंबई में है, परंतु भीतर में दृढ़ निश्चय है कि बंबई में है, सोते उठेंगे तो इतना याद आ जाएगा बंबई में। जैसे ये बात है रही यार, इस तरह से ये बात ठीक समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हम तो जा रहे हैं, शरीर संसार बीत रहा है, विमुक्त हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, तो प्रतिक्षण हो रहा है, अब कितना दिन साथ में रहना होगा इसका तो पता नहीं, परंतु हमारा वियोग हो गया इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये बात एकदम कायम रहे, आपके दुर्गुण दुराचार सब मिट जाएंगे, पाप अन्याय ये सब मिट जाएंगे, धोखा देना, विश्वासघात करना, लूट खपट करना, ठगाई करना, ये चीज रहेगी नहीं पास में, किसके लिए कितना। आते हो वो तो बैंकों में, तिजोरियों में, यहां जमा होता है, और पाप करते हैं वो अंतकरण में, भीतर भावों में पैदा होता है, जमा होता है, मरते हैं तो बाहर के धन में से कोई एक साथ नहीं चलता, धन तो दूर रहा, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे, साथ नहीं ले जा सकते, और जितने भीतर जो भाव है गंदे गंदे, लूट कपट करने के, बेईमानी के, धन के लिए जितना जितना जालसाजी बेईमानी करी, वो तो साथ रहेगी कि नहीं? वो तो भाव अंतकरण में भीतर बैठा हुआ है, भीतर बैठा है वो तो, भीतर में भाव पड़े हुए हैं जिनको ऐसा संचित कर रखते हैं, तो वहां भीतर भाव को बढ़िया से बढ़िया रखो, अगर भाव ही रखना है तो उत्तम रखो, बुराई क्यों रखो? दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य, तो अच्छे भाव होंगे तो साथ में अच्छे चलेंगे, बुरे भाव तो बुरे चलेंगे। स्वभाव हमारा बड़ा हुआ है, हम चाहे यहां रहे चाहे और जगह कहीं चले जाए, धन संपत्ति तो साथ नहीं चलती, परंतु स्वभाव तो पीछे रहता ही नहीं, ये तो साथ रहता है कि नहीं? जिसकी जैसी आदत पड़ी हुई है, जैसा स्वभाव है, जैसे भीतर के भाव है, कहीं भी जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अपने वो तो साथ में है, ऐसे शरीर छूटने पर भी वे भाव साथ में जाएंगे। तो मनुष्य उन्नति चाहता है तो वास्तविक उन्नति वो है जो भीतर के भाव शुद्ध हो जाए, निर्मल भाव हो जाए, वो असली पूंजी है आपके पास, जितनी दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, समता है, संतोष है, ये आपके भाव है। इस निधि को, इस खजाने को, इस रत्नों को, इन रत्नों को कौन ले सकता है? और जहां जाएंगे वहां काम आएंगे। बाहर की इज्जत वास्तविक इज्जत नहीं है, भीतर की इज्जत ही इज्जत है। बाहर से सुंदर बन जाए परंतु भीतर से गंध दे रहे हैं तो वो सुंदरता क्या काम आएगी। और भीतर से सुंदर है तो बाहर से चाहे सुंदर रूप न दिखे, परंतु वो सुंदरता रहेगी। अपने अच्छे एक पंडित कह रहे थे, वो बात कह रहे थे सेठ जी गोविंदिका जी बोलते हैं तो विशेष पढ़े लेकर नहीं दिखते, पर बात ऐसी मार्मिक कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम। नरनाथ जी महाराज कहते थे आचार्य, वर्णन किया कि मनुष्य का विद्या है वो रूप है, सुंदर अधिक रूप है। अब विद्या बड़ी रूप क्या हो जाएगा, काला कोई गोरा हो जाएगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, बहुत श्रेष्ठ रूप है। तो शेर ने व्याख्या करते हुए कहा कि कोई बोलता है व्याख्या दे तो सब लोग उस तरफ देखते हैं कि टकी देखते हैं, तो सुंदर रूप की तरफ देखते हैं नहीं लोग। तो विद्या कितनी सुंदर है। अब विद्या भी सुंदर है तो सद्गुण सदाचार भजन स्मरण त्याग वैराग्य समता आदि अगर भीतर में आए हो तो कितना सुंदर रूप है वो। लोग देखे चाहे न देखें, लोगों की दृष्टि जावे चाहे न जाए, तुम उस सुंदर का तो ब्रह्मा जी भी छीन नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं उस सुंदरता को इधर से कोई कर दे। कितना सौंदर्य है वो, आपकी साधना है, आपका तत्व को समझना है, कितना सुंदर है। उस सुंदरता में ये बहुत बड़ा गहना है कि संसार जा रहा है, हरदम ये ठीक दिखे तो साफ ही, ये बंबई है, समुद्र है, ये मकान है, ऐसा दिखता है। इस तरह से तो स्वाभाविक स्वतः भीतर में जागृति रहती है कि भाई दिन तो दिन दिन ठंडिया जाते हैं, ताश तो किसा समय कहे कबीर डह क्या वो तो गुण में गंदी दी है, दिन दिन ठंडिया जाते प्रतिदिन छोड़ते चले जा रहा है। ठीक सीधी बात है, ये बात आपके हरदम याद रहे तो आपका बहुत स्वरूप सुंदर हो गया है, आपका मुर्दा रूप नहीं रहा, मुर्दे रूप से ऊपर उठ गए, प्राण छूटते ही मुर्दा हो जाएगा तो अभी हो क्या जाएगा, अभी क्या है तो वही और क्या हो जाएगा, प्राण नहीं देने से मुर्दा कह दिए। तो आपने ये बात समझ ली, आप मुर्दे से ऊंचे उठ गए, नहीं तो मुर्दे में बैठे हरदम। कितनी पवित्रता आ गई आप में, एक तो मुर्दे में हाड में मांस में मल मूत्र में बैठा रहे और एक इससे ऊंचा उठ जाए, कितनी शुद्धि हुई बताओ। ऐसी भी सादी बात, निर्मलता आ गई आप में। अब सही रहे चाहे छूट जाए चला जाए, ये चला जा ही रहा है, इसमें क्या बात। तो कितने पवित्र हो गए, कितने निर्मल हो गए। अरे उस भाव में एक औरों का हित कैसे हो, सबको लाभ कैसे हो, ऐसा आपका भाव भीतर का उपकार करने का कितनी बढ़िया बात है। ऐसा होते ही आपके शारीरिक बल हो चाहे धन बल हो चाहे विद्या बल हो अधिकार का बल हो पद का बल हो कोई बल हो, उस बल के द्वारा दूसरों का हित होगा। और दूसरों का हित होगा उसका असर आप पर पड़ेगा, आपका बड़ा भारी हित होगा। मनुष्य धन के लोभी होने से उस तत्व को समझते नहीं, धन लेने में जितना आनंद है उसकी अपेक्षा देने में बहुत ज्यादा आनंद है, परंतु इधर ख्याल नहीं है। माघ पंडित हुए हैं, मारवाड़ के गांवों में आया कहीं हो तो माघ जी, ऐसा माघ पंडित हुआ मामूली नहीं था, बड़ा भारी नामी पंडित थे। तो जिस राज्य में रहे थे वो राजा से किसी ने कहा कि आप जानते हैं ऐसा पंडित है उनके घर में खाने को अन्न नहीं है, लेकिन माघ जी के पंडित जी की स्त्री ने साग बनाया तो साग पाते हुए पूछा कि यार साग कहाँ का बना है, कुछ इमली के पत्तों का, इमली के पत्ते जल्दी सीजते नहीं, कड़े होते, छोटे छोटे पत्ते नर्म नहीं होते जल्दी, तो ये साग कैसे बनाया, क्योंकि सुबह मैंने बात रसोई करी तो आपने इमली की तरफ देखा था, इस विचार का इमली के पत्तों का साग बनाओ, मैंने बना दिया। अब इमली के पत्तों को साग होता तो राजा से कहा तो राजा ने बुलाया महाराज को, बड़ा आदर किया, सिंहासन पर विराजमान किए, पूजन किया और बहुत से रुपये भेंट किए। वे नाना कहते गए, राजन दे दिए, नीचे उतरे तो मांगने वाले मिले, देते 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 जैसे घर से आए वैसे घर पहुंच गए, पास हो गई। ये अवस्था है, खाने को अन्न नहीं है तो क्यों दे देते हैं, कि देने में जो सुख है वो लेने में सुख है नहीं, परंतु इसका पता कब लगे, जब आप देने लोगों तब लगेगा। किसी मिठाई के रस को आप जानना चाहते हो तो उस खाने से ही पता लगेगा, बिना खाए क्या पता इस मिठाई में कैसा रस है। आपके स्वभाव पड़ जाएगा तो आप रह सकोगे नहीं, स्वाभाविक देने की वृत्ति पैदा होगी, क्योंकि उसमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है, विलक्षण छोड़ नहीं सकता आदमी। अपने ये चित्तरंजन दास सीआर कहते हैं, उनके भी ऐसे स्वभाव था, बंगाल में हुए हैं, हरिश्चंद्र भारतेंदु कहलाते हैं, बड़े नामी अच्छे कवि हुए, भारतेंदु पदवी उनकी, भारत का चंद्रमा, उनकी ऐसी वृत्ति सुनी गई, धन आया देवी के पास खत्म। जीवित आदमी का उदार देना बढ़िया नहीं है, परंतु एक बात याद आ गई, वृंदावन में भक्तमाली जी महाराज हरे जो भक्तमाली कथा करते हैं, बड़े उदार साधु पुरुष है, ब्राह्मण है, बाल बच्चे वाले हैं, लड़की है, गाय भी रखते हैं, तो सप्ताह करते हैं तो सप्ताह बाद थी, सप्ताह में भेंट आई, ब्राह्मणों को दे दिया, ऐसे देते देते बाकी बच के घर पर आ गए। थोड़े से रुपये इकट्ठे हो जाए तो कहते ब्राह्मणी देखो अब साधुओं की पंक्ति करो, रुपये इतने हो गए संतों को भोजन कराओ, अब साधु इसमें कोई आवे कैसा ही हो, चूड़ा चमार हो जाए कोई हो कैसे साधु है, भोजन कराओ। भक्तमाल में जैसे संतों की कथा आती है इसी तरह से भाव से भोजन कराती है, इतने संतों की पंक्ति कर दो, इतना पैसा पड़ा है। तो बात है कि उनके जब इस बात का रस आ गया तो कैसे छोड़ेंगे। इस तरह से सत्संग में आदमी जाते नहीं और सुहाते नहीं पर जाना शुरू कर दे थोड़ा दिन कर गए फिर छोड़ नहीं सकते। अभी बीकानेर में एक जवान लड़का आया, वो कहते मेरी माँ सत्संग करती है बरसों से और माँ का कहना मैं करता हूं, तो सत्संग तक माँ को पहुंचाकर मैं चला जाता हूं, ऋषिकेश भी पहुंचा दूं माँ को और फिर चला जाऊं, माँ की सेवा करता हूं। अब कहते हैं यहां बीकानेर, अब की बात है, माँ ने कहा कि बेटा एक बात कहूंगा, हाँ माँ तुम 3 दिन सत्संग कर ले। तो माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया, माँ की आज्ञा कैसे टाले। तो पहले दिन तो गए ऐसे ऐसे करता रहे, ऐसा बैठे दिवाली उठा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो अब बुलाना नहीं पड़ता, रोज जाना, कोई सत्संग ऐसा नहीं हुआ होगा जाता और मैं छोड़ू जाता ही। इसलिए सिद्ध होता है कि जब तक जिस चीज को न सकते तब उसके रस को कैसे जाने, इस तरह से उपकार करना है, हित करना है, सेवा करना है, इस बात को समझ जाएगा कैसे छोड़ सकता है, कितना उसमें रस है, कितना उसमें आनंद है, लेने में वो रस नहीं है। माताओं का ये स्वभाव है पर वो थोड़ा सीमित है। भगवान श्री राम वनवास के लिए तैयार हुए, माँ कौशल्या के पास जाते हैं, माँ बोलती बेटा देखो आज राजगद्दी होगी, राजतिलक होगा, सवारी निकलेगी, बहुत देरी लग जाएगी, कुछ खा लो। माँ के मन में खिला दे उस खा लो, स्वाभाविक ही स्नान और कर नित्यनेम करके जल्दी तैयार हो जाओ, भोजन कर लो, कुछ खा लो, फिर जाना। ऐसे माँ कहती शुद्ध स्वाभाविक भाव है, भी खा लो, ये आदत है, सुबह खिलाती है, नहीं खिलाने के लिए खिलाने की आदत रहती है और उसमें प्रसन्नता होती है। लड़का ठीक तरह से भोजन कर ले तो माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। बोलो अब हरेक आदमी संग में कैसे आवे, खिलाकर राजी होना की, उखाकर राजी होने की है आदत। इस तरह से उपकार करने की आदत पड़ने के बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, रह नहीं सकोगे आप। गीता प्रेस में काम करने वाले थे सुखदेव जी, वो कहते थे भाई जी वहां रहते थे गोरखनाथ के पास, ये बगीचा पीछे खरीदा, हम गए तो वहीं रहते थे। एक दिन उदास बैठे हैं, सुबह हम पहुंचे तो उदास बैठे, भाई बहुत उदास। तो भाई जी क्या बात है आज उदास कैसे हो? कि भाई अमुक अमुक ब्राह्मण के वहां उस पर कर्जा है, आज उसको कचहरी में हाजिर होना पड़ेगा, वो देगा क्या, घर और सब लीला हो जाएगा, कुड़क हो जाएगा, क्या करेगा, बस चिंता कर रहा हूं। ये सुखदेव जी ने सुनाई और हम लोगों ने प्रबंध किया उसे गए। भाई जी काम करते थे, वैश्य भाई थे, सब कुछ, परंतु पास पैसे नहीं थे और कहते लाखों रुपया दान किया मैंने, कैसे हरी गाड़ी भाई जी, इतना रुपये मेरा लगा दो, इतना रुपये मेरा लगा दो। ये गोरक्ष आंदोलन हुआ, अभियान हुआ, जिसमें गोली चली हुआ ना, उसमें खजांची भाई जी थे, अरे आदमी भेज दे मेरे अपने मेरे अंदर भाई ना कर भैया बहुत है बहुत है। अब उनका खुद का ऐसा उदार भाव, अब हरेक का विश्वास हो जाए कि यहां भाई हमारा सदुपयोग होगा, पैसा होगा, आप लोगों को कमाने के लिए तो समय मिलता है, खर्च करने के लिए समय नहीं मिलता। श्री जयदयाल जी ने कहा था कि पैसा कमाना हमारे बहुत मामूली बात है, लगाना कठिन है। ऐसा पैदा कर क्या मामूली बात, लगाने में कई तरह की बाधाएं आती हैं। सोचना पड़ता है कहाँ तो उचित है, अनुचित है, कुपात्र है, पात्र है, क्या का विचार करना पड़ता है। और फिर लोभ साथ में रहता ही है, वो तंग करता है, और खर्च होने नहीं देता। यहां तो ऐसा है, यहां इतने ही चल जाएगा, क्या जरूरत ज्यादा की। और जिनका स्वभाव बढ़ गया है ना, वो ज्यादा जरूरत क्या है, वो तो कर रहे हैं। और वो उदारता साथ चलेगी सज्जनों, मरने के बाद भी उदारता और कंजूसी ये साथ रहेगी, इतने रुपया पास में नहीं रहेगा। तो रुपयों के बदले बहुत बढ़िया रत्न खरीद लिए, लोग साथ में रहेगी। जिनके पास उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, ऐसे आपको अच्छे लगते हैं ना, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जिसमें वास्तविक त्याग होता है। आप इतने बैठे हैं, उन्हें कोई पहचाने कोई न पहचाने, किसी की रुचि हो किसी की न रुचि हो, बात अलग है, परंतु सभी के लिए तो प्रायता तो यही है कि आपको अच्छा लगेगा। वो क्यों अच्छा लगेगा, उसे त्याग है, तो फिर आप त्यागी बन क्यों नहीं जाते। वो तो उसमें बढ़िया था, बड़े उसे भी लाओ, इतना तल्ला का मकान है तो उसे और तल्ले का बनाओ, यह तो आपकी ईर्ष्या हो जाती है, जो कि हाथ की बात नहीं। और त्याग हाथ की बात है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती कि उनके ऐसा किया तो नहीं, त्याग तो तुम करो, पैसा हम कर रहे हैं, त्याग आप। तो कितनी बुद्धि कहां चलेगी बताओ। ये स्वभाव आपका बढ़ जाएगा ना, वो असली वास्तव में आपकी इज्जत है। गीता ने कहा ये श्रद्धा स एव स, जैसी श्रद्धा वाला है, जैसे स्वभाव वाला है, उसका वही स्वभाव है, वही उसका स्वरूप है, वही उसकी इज्जत है। अभी चाहे दिख रहे में वो कैसा ही दिखे, परंतु असली उसका स्वरूप क्या है, जैसा भाव है वैसे ही, जैसी नियत है, पितृ के जैसे भाव है, वो उसका असली स्वरूप है। खराब है तो यह सामान्य प्रकट हो जाएगा, पता दिख जाएगा, अच्छा है तो ही पता लग जाएगा। और इसमें आप हम सब स्वतंत्र हैं, ध्यान देना, पैसा पैदा कर लेने में स्वतंत्र नहीं। समाज में हमारा नाम हो जाए, हमारे को अच्छा समझे, ऐसी इच्छा होती है, अपने हाथ की बात नहीं। और स्वभाव आप शुद्ध बनाओ, इसमें बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, भाई बहन सब स्वतंत्र, इसमें कोई पराधीन नहीं। अपना स्वभाव बनाना है ना, और प्रत्यक्ष शांति, अपने को शांति, औरों को शांति, आनंद ही आनंद। लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, कहीं कहीं लोक में आपको हानि भी होती है, होती नहीं है, वो लोभ के कारण से ऐसे उदारता से कहीं कहीं हानि होती है। हानि कैसे होती है, नहीं होती, दिखता है, पर दिखता रहे। वास्तविक उन्नति आपकी हो रही है, आप इतने बैठे हो, स्वयं विचार करो कि आपका भजन ध्यान करने का स्वभाव हो गया है, सत्संग मजना का स्वभाव हो गया है, जप आदि करने का स्वभाव हो गया है, तो क्या उसको छोड़ सकते हो। किसी कारण से उसमें कमी रहती है तो खटकती है दिन भर मन को, जैसे भोजन न किया हो और खड़के कि आज तो क्या करें, भोजन ही नहीं हुआ। इस तरह से नित्य क्रम न होने से एक खटकता है कि आज तो भाई इतना हुआ, आज तो ठीक नहीं हुआ। जिनके पक्का नियम है उनको शांति नहीं मिलेगी। जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय छोड़ दे तो छोड़ सकेंगे नहीं, वो करने से ही संतोष होगा, खुराक है वो। इस तरह से वास्तविकता जब आ जाएगी तो उसका तो त्याग हो सकेगा ही नहीं, चाहे गला काट लो कोई नष्ट कर दो, परंतु अपना असली स्वभाव उसको छोड़ दे, उसके हाथ की बात नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद जी को कितने त्रास दी गई, सीधी बात ही क्यों त्रास पा रहे, आज तो थोड़े से व्यापार के लिए जूठ कपड़ा है काम कर लेते हैं, तो पैसा जा रहा है, अरे उसका तो राज्य जा रहा है, प्राण जा रहे हैं। तो आजकल के अटकल लगा रहा है, मूर्ख था वो, और वो कष्ट सह लेंगे भाई, भजन स्मरण कैसे छोड़ दें, भगवान का चिंतन कैसे छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। मारने के लिए, बाप मारने के लिए चेष्टा करता है संसार में, देखो रक्षा करने वाला होता है पिता, वो मारने का ढंग कर रहा है, और मारने की कितनी चेष्टा करी, अब मरता नहीं, वो क्या करे बेचारा, हैरान हो गया। प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा कि पिताजी क्यों मारते हैं आप, क्यों तंग करते हैं, क्यों दुख देते हैं, कभी नहीं, मन की फुरना तो नहीं हुई, प्रहलाद जी के मन में फुरना ही नहीं हुई, कि भाई शरीर उसी का है, माँ बाप का शरीर है, मर्जी आप जैसे रखे, हमारे बोलने क्या है इसमें अधिकार, मन जो मैं हूं वो परमात्मा का अंश, मैं भजन में लगूं तो इसमें दखल देना के इनको क्या अधिकार, ये तो कोई न्याय नहीं, शरीर पर अधिकार आपका है, चाहे सो करो। गुरु पुत्र थे संडा अमरक, उनको कहा कि इसको मार दो, उन्होंने कृत्या पैदा करी, मूठ चलाई मारने के लिए, प्रहलाद जी वैसे ही खड़े रहे, प्रहलाद जी के लगे नहीं, पीछे जाकर उनको पड़ी, मार दिया दोनों को, गुरु पुत्र मर गए। अब वो मर गए, वो सहा नहीं गया प्रहलाद जी से, और भगवान से कोई काम न करनी नहीं है, कोई मांगना नहीं कभी, तो कहा कि मेरे साथ इतना द्वेष करते हैं और अंत में मारने तक का मेरे पर प्रयोग किया है, तो मेरे मन में अगर किंचित मात्र भी इनके प्रति वैर भाव, द्वेष भाव, बुरा भाव पैदा नहीं हुआ है, ये अगर सच्ची है तो जी उठे उसी में, भाव ही मेरा पैदा हुआ वो बुरा तो वो सत्य नहीं है, अगर नहीं हुआ रे बात सत्य है उस सत्य की प्रबल दी जाए, ठीक है। तो प्रहलाद जी की आज कथा कहते हैं, सुनते हैं, कितनी विचित्र बात है, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, गोस्वामी महाराज लिखते हैं, भगत शिरोमणि हो गए, नाथ जी के उपदेश से हुए तो नाथ जी तो गुरु जी हुए, और प्रहलाद जी महाराज शिष्य हुए, परंतु परम भागवता नमामि जहां आया है वहां प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुखसौन भीष्म दाल ध्यान, तो प्रहलाद नारद पराशर, पहले प्रहलाद जी का नाम, नारद जी का दो नंबर भी नाम है भक्तों का, यहां वर्णन है भगत शिरोमणि वे प्रहलाद, भगवान के भजन में लगे, किसी पर द्वेष नहीं, अब उनके आनंद का कोई ठिकाना है, कितनी मस्त है, कितना सुख है, लोग समझते हैं कि मान बढ़ाई हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए तो सुख होगा, सज्जनों होगा बहम है, पर धन संपत्ति होने से सुख कितना हुआ है, आप भोग करके तो देखो, थोड़ी कृपा करो, ध्यान दो, साधारण स्थिति वाले को लाखों करोड़ रुपए मिल गए, वो मिलने से कितना आपके झंझट हुआ है, कम होने से कितना था, ये स्वयं अनुभव कर लो आप, अब कहेंगे सच्ची बात है। तो पदार्थों से शांति मिल जाएगी, सुख हो जाएगा, ये बात है नहीं। वे नाशवान है, वो तो खत्म हो रहे हैं। कितना दिन से वो लोग बड़े से बड़े धनी हो गए, कितना दिन रहोगे? धन कितना दिन रहेगा? आप धन के पास कितना दिन रहोगे? दियोग सहयोग कब तक रहेगा? धन चला जाएगा तो आप चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे, रहने वाले तो है नहीं। झूठे है संतोष से क्या होगा? कितना दिन काम चलेगा? ये बनावटी बातों से शांति कब तक रहेगी बताओ? अगर भजन सुमन करते, न्यायुक्त काम करते, शांति से कितना आनंद था। हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट उठा लिया, परंतु अशांति मन में नहीं। श्री दधी जी हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, आज भी उनका नाम लेते हैं, नाम लेने से शांति मिलती है। मीराबाई एक अपनी बहन हो गई, अब उसका कितना विचित्र नाम, उनके पद गाने से शांति मिले, पापों का नाश हो। कारण क्या? भगवान में लगी। मैं तो गिरधर रे मन भाई, राणा जी मैं तो गिरधर रे मन भाई। गिरधर नागर बस भगवान का भजन स्मरण कर रही है, उसके भरोसे कितने निश्चिंत है, कितने निर्भय है। पर्दे में जन्मी, बालपन में पर्दे में रही, ब्याही गई तो पर्दे में रही, ऐसी निरंतर पर्दे में रहने वाली अकेली चल देती है, पैदल चली जाती है द्वारिका। ये बहना बैठी, किसी की हिम्मत है क्या? इकल निकाल दे इनको, द्वारका चले जाओ। बहनों माताओं की बात दूर रही, आपको निकाल दिया जाए, कुछ पास में नहीं चले जाओ, पैदल मुश्किल हो जाए, बहुत थोड़े निकलेंगे, हिम्मत नहीं होती। अब स्त्री शरीर कहां जाए बेचारी? कहां खाऊंगी, कहां रहूंगी, कहां बैठूंगी, क्या चिंता? बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि सबल का सरना लिया है ना, धन का सरना थोड़ी जो नष्ट हो जाए। घर का, मकान का, कुटुंब का सरना ले तो कितना दिन ठहरेगा वो? कब तक टिकेगा? और भगवान का सरना कब मिटेगा बताओ? ये शरीर संसार तो कई बार मिट गया, मिटते ही रहता है, वो परमात्मा है जो करती हूँ। जीवात्मा भी उसी का आयुष होने, ये भी नित्य है, चोली बदलती है पर स्वयं रहता है। तो बदलने वाले का सहारा कितना दिन चलोगे भाई? सहारा तो उसको जो नित्य है, जो ये नित्य जा रहा है, ये अनुभव है, अनुभव का आदर करके इस बात को मान लें कि भाई ये तो जाने वाला है, इसमें क्या रोवे, क्या चिंता करें? आ गए तो क्या हर्ष मनावे, चला गया तो क्या दुख मनावे? ये बिगड़ने वाली चीज नहीं, जा रही है, जा रही भी जा रही है। अपना काम ठीक तरह से करो, न्यायुक्त काम करो, उत्साहपूर्वक काम करो, सबके साथ व्यवहार बर्ताव अच्छे से अच्छा करो। ये तो अपना काम है, क्यों उसी के स्वभाव से दुर्दा? शुद्ध स्वभाव से बर्ताव अच्छा होता है, अच्छे बर्ताव से स्वभाव की शुद्धि दृढ़ होती है भीतर। लोगों को ऐसा वहम है कि हम भक्ति करके भक्त बनेंगे, हम सत्य बोल करके सत्यभाषी बनेंगे, और पाप करते करते हम पापी बनते हैं, ऐसी धारणा है। अपनी बात सच्ची ये नहीं है। पहले सत्यवादी बनकर के सत्य बोलता है, चोरी करने वाला चोरी करने के भाव से पहले गिरता है, चोरी करता है, तब न वो चोरी करता है। अगर वो पहले चोर न बने तो चोरी नहीं कर सकता। तो चोर पहले बनता है, चोरी करके चोर भाव को दृढ़ करता है, मजबूत होता है वो। तो भाव पहले बनते हैं, पीछे आचरण बनते हैं, उन आचरणों से वो हमारे भाव दृढ़ होते मजबूत हो जाते हैं। ऐसे दया क्षमा आदि धारण कर लो, तो पहले कर लो, फिर जो जो आचरण करोगे जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी उदारता शुरू कर दो, तो शुरू करते में थोड़ा जाएगा, पर उदार पहले भाव होगा, पीछे खर्च होगा, खर्च करते के उदार भाव हो जाएगा, फिर आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। ऐसे सत्संग पहले जाओ, सत्संग करो, सत्संगी बनो, और फिर सत्संग करो, करते करते सत्संग के भाव दृढ़ हो जाएंगे। और बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है सत्संग में। मैं तो पुस्तक पढ़ता हूं और सुनने का काम थोड़ा पड़ता है आजकल, कहने का काम पड़ता है ज्यादा, पर पुस्तक पढ़ने में, सुनने में और कहने में नई नई बातें पैदा होती हैं, बड़ी विलक्षण बातें। सुनो, आपको विश्वास तुम्हें कैसे दिलाऊं, मेरे तो ऐसी विलक्षण विचित्र विचित्र बातें आती है मन में, कितनी शांतिदायी, कितनी सुखदायी, कितना आनंद देने वाली बातें। अगर ये भाई बहन हमारी ले ले, कितनी बढ़िया बात, हम प्रत्यक्ष शांति जीवती हैं, बहुत आनंद। और बड़ी सीधी सीधी सरल बात, गीता जी में पढ़ते हुए बहुत वर्ष हो गए, अभी तक नई नई बात पैदा होती नहीं। एक बात बताऊं आपको, अभी इंदौर में मेरे समझ में आई बात, और वो बात मैं कहता हूं, समझाता हूं, सुनाता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, सुने सुनाता भी हूं, पर ठीक समझ में आई। जैसे कर्मयोग है, तो कर्मयोग के द्वारा कर्तृत्व कैसे नष्ट होता है, ये बहुत विशेषता से स्पष्ट आई एकदम। पहले ही मेरी ये भावना थी कि कर्तृत्व मिटता है कर्मयोग से, पहले वहम नहीं था, संदेह नहीं था, परंतु विचित्र ढंग से आई समझो, तो ये तो ठीक बात है। अरे वो सुना ये भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और बड़ी सीधी बात और बड़ी कठोर बात है महाराज, सत्शास्त्री पंडित को कहा जाए कि कर्मयोग से कर्तृत्व नष्ट होता, नहीं मानेगा। अच्छे अच्छे पंडित नहीं मानेंगे इस बात को, कर्मयोग से कर्तृत्व दृढ़ होगा, कर्तृत्व कैसे नष्ट हो जाएगा, कर्म करने से कर्तृत्व दृढ़ होगा, शास्त्र में आती नहीं ऐसी बात विशेष। और बिल्कुल भी ऐसा आप कर्तृत्व रह ही नहीं सकता। आप थोड़ा ध्यान दें, आपको बताऊं बात, किसी सेवा समिति में आप भर्ती होकर किसी मेला महोत्सव में स्वयं सेवक बनकर के आप काम करे, काम किया, तो अपने आप को आप स्वयं सेवक मानते हो, और तो मेला महोत्सव मिट गया, आप अपने घर पर काम करते हो, तो वहां भी अपने को स्वयं सेवक मानते हो क्या? वो उसी से बैठा, जाने तो वो काम सब करते नहीं, पर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्याह हुआ उस समय आप अपने को समझते कि मैं बींद बन गया, मैं दूल्हा हूं, जितने ब्याह हुए वो सब बने हुए हो, आज अपने मानते हो गया मैं बींद हूं, बताओ तो ब्याह किस समय बने थे कि नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। और कह देखो ऐसे ऐसे बैठो, ठीक रहे वैसे बैठो, देखो चलो धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलते, जो कह दे वही सत लागू हो जाती, पर आज वही कहे तो मानोगे, होता वही। तो उस समय मैं भाई मैं दूल्हा हूं, मैं बींद बन गया बस, अब बन गया तो बनाओ की गंगा चलो साहब, वही तो भेज रखो, वैसे ही बोलो, वैसे ही चलो। तो वो बींद बने का कर्तृत्व तो आज है क्या आपके मन में? है ही नहीं। तो जब तक वो काम करे तब तक वो कर्तृत्व रहता, कर्तृत्व हरदम कैसे रहेगा? कर्मियों में किसी काम करो उस कर्तृत्व रहेगा, वो छोड़ हरदम के गया। ये मुफ्त में मान लेते हैं कि मैं करता हूं, अरे भाई तुम करता तो काम के समय में और हरदम दौड़े हो, अभी आप श्रोता बने हुए हैं, सुनने वाले हैं, मैं अभी कहने वाला बना हुआ हूं, मैं कहीं जाकर सुनने वाला बैठ जाऊं सुनने को तो वे बोल तो मैं तो भक्ता हूं कैसे होगा। परंतु मन में बहम रहता है कि मैं इतना बोलने वाला भक्ता हूं ये ठीक नहीं कहता है, मैं तो हूं तो ऐसा कह दूं, मैं तो ऐसा समझा दूं ये ठीक नहीं कह रहे, तो भक्ता बड़े की बू भी तो पकड़ी तो मूर्खता से पकड़ी हुई है, ये मूर्खता से पकड़ा हुआ है। करते तो जब क्रिया करता है तब क्रिया बनता है, अब भोजन करते हो भोगता बनते हो तो हरदम खाऊं खाऊं करते हो क्या? बताओ, ठीक समझ में आती, क्रिया करने से मुकर्ता बन गया, वो भी बनावटी होता है वास्तव भीतर से नहीं। ये कर्मयोग का कर्तृत्व है साहब, कर्मयोग है, कर्म है और योग दो चीज है। अब कर्म अपने लिए करता है तो कर्तृत्व पकड़ा जाता है, कर्मयोगी का कर्म अपने लिए कभी नहीं होता, और अपने लिए कर्म होता है वो कर्मयोगी होता ही नहीं कभी। अच्छे अच्छे वेदांतियों को आप पूछ लेना तो बात नहीं समझ में आती, नहीं बता सकेंगे। कर्म के कर्मयोगी जो कर्म होता है वो अपने लिए नहीं होता, जगत के लिए होता है, दुनिया के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, मन बुद्धि के लिए होता है, इंद्रियों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। कर्म संसार के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। एक कर्म विज्ञान है, एक योग विज्ञान है, दोनों विज्ञान है, बड़ी मार्मिक बात है। दार्शनिक पंडित भी जल्दी नहीं समझेगा, ऐसी मार्मिक बात है। परंतु कौन ध्यान देता है, कौन सुनने करता है, पर अभी पर हो रही है। कर्म है ना, कर्म वो कर्म की सामग्री संसार से मिली है, शरीर संसार से मिला, योग्यता पढ़ पढ़ाकर प्यार संसार से मिली, योग्यता बल बुद्धि विद्या अवस्था मिली तो संसार से मिली है ना। क्या आपका अकेला का शरीर है क्या? माँ का भी है, बाप का भी है, अन्न देने वाले का भी है, पढ़ाने वाले का भी है, नौकरी करते तो उस मालिक का भी है, सबका है। आपको अकेला कैसे भी है? कोई कह सकता है अकेला हूं मैं? तो इतनों का शरीर है तो संसार का शरीर हुआ, बात सीधी सादी बात भी है। संसार की समस्ती हवा से तो प्राण लेते हैं, और नहीं लो प्राण तो जी सकते हो ना। सांसारिक जो है समस्ती मिलने वाले जल से बीज रहे हो, पृथ्वी को चल रहे हो, प्रकाश प्राप्त कर रहे हो, तो समस्ती सृष्टि से मिल रहा है ना। तो आपके पास सामग्री सृष्टि की है, तो सृष्टि की सामग्री सृष्टि में लगाने में बाधा क्या है? उसकी ले लो, ईमानदार बन जाओ उसी में। ईमानदार का नाम है मुक्ति, बेईमान का नाम है बंधन। बंधन क्या? कि शरीर को अपना मानना, मन को अपना मानना, इंद्रियों को अपना मानना, कर्म भी अपने लिए करने, उद्धार भी मेरा हो, वही माने। क्योंकि उद्धार तक ही है तो उद्धार मेरे क्यों हो? मेरे तो कोई चीज है ही नहीं मेरे पास, ये तो संसार की है। काम करे दुनिया के लिए, जिसके दुनिया का अहित तो होता हो वो कभी काम नहीं करेगा। किसी के भी अनिष्ट की भावना है ही नहीं, सबके सुख होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्मयोग से सबसे ये स्थिति हो जाती है, एक ही होती स्थिति। पर कर्मयोग तो कर्म मात्र दुनिया के लिए, सबके उद्धार के लिए, उसके पास जो चीज है शहीद उनके लिए, भजन करता है तो उनके लिए, कीर्तन करता है तो उनके लिए, सत्संग करता है तो उनके लिए, एकांत बैठ ध्यान करता है दुनिया हित के लिए, समाधि लगा कर निर्विकल्प होता है दुनिया के हित के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए कोई क्रिया नहीं, कर्म मात्र दुनिया के लिए होने से आपका क्या, आपका योग हो जाएगा परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध, उसकी पहचान हो, ये योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे अध्याय 23वें श्लोक में कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या होगा, दुखों के संयोग का ही वियोग, दुखालय में साथ में संसार, इसके साथ सर्वथा वियोग होने पर अपनी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी। क्योंकि हमारी क्रिया मात्र दुनिया के हित के लिए होगी तो क्रिया का प्रवाह हो जाएगा संसार का संसार में, आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में हो जाएगी। पदार्थों को और क्रियाओं को अपने लिए मान लिया, ये आपका वियोग हो गया परमात्मा से, और संसार साथ में ठहरेगा नहीं, भी परमात्मा से तो हो गए विमुख, संसार का आप ठहरेगा नहीं, दुख पाते ही रहो। सीधी सादी बात, तो ये बातें मैं पहले भी जानता था, याद थी, और मेरे सामने काम पड़ा तो मैंने कहा है कर्मयोग बड़ा स्वतंत्र साधन है, परंतु साफ साफ दिखने लगे, यो चौड़े दिखे, जो मकान दिखे साफ दिखे, करते तो अलग चीज है, कर्म योग है तो बहुत ठीक सीधी बात। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें सत्संग में मिलती है, मेरे को खुद को मिलती है, आपको भी मिलती होगा। कई लोग कहते भी हैं कि सत्संग में अच्छी बातें मिलती है, कहते तो विचित्र बात है, बड़ी शांति देने वाली, रुपये से वो शांति सपने में भी नहीं मिलती, परंतु रुपयों के लिए ये कोशिश है, इतनी सत्संग के लिए कोशिश है क्या? हमने सुना है सत्संग में एक दिन शरणानंद जी ने प्रश्न किया कि भाई असली आवश्यक काम छोड़कर कौन आया है, तो कोई नहीं, आवश्यक काम है इस बात, कल तो आकर नहीं, आवश्यक काम हो गया, जरूरी काम हो गया, तो जरूरी काम छोड़कर सत्संग कौन करता है? पूछा भैया जरूरी काम छोड़कर कौन आया? तो सबसे फालतू काम है सत्संग करने का, जरूरी काम न हो तो सत्संग में चलो। अब वो सत्संग महात्म सुना कि इतना महात्म ऐसा इतना दिन पर सत्संग किया, हमारे लाभ तो नहीं हुआ, सत्संग किया फालतू काम किया, पूछ रहा हूं ये सत्संग हुआ, ये तो फालतू काम हुआ। फालतू सत्संग करने पर भी लाभ होता है, ये तो भगवान की कृपा है, नियत से लाभ होना नहीं चाहिए। क्यों फालतू समय सत्संग किया? अरे जो पूछे सत्संग कौन सा रखा जाएगा, इस समय रखा जाए, इस समय हम आदमी आ सके, बहनों माता को इस समय आ सके, इस समय रखना चाहिए, सुनिए और समय काम रहे तो आ नहीं सकते, ये होता है कि नहीं? ऐसे निर्णय करके बस जो आदमी ज्यादा आ सको वो काम रखा जाए, तो निकमा काम तो निकमे समय ही रखा जाए, लाभ चाहते हो असली की, चर्चा तो असली की चलती है, तोला जाए सोना और ले दोड़े ईंट कि मेरे अभी तोलना पड़ा, अरे सोना तोला जाता ये है ना मेरी पीने के लिए, मेरी ईंट है इतनी। तो सत्संग की महिमा तो सत्संग की होती है, फालतू बात की होती है। तो ऐसी कीमत दे उनको, पता लगता है कि कितनी विचित्र बातें हो, कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितना लाभ होता है, इसके हर एक को पता नहीं। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था कि स्वामी जी आपको पता नहीं है सत्संग लाभ होता है। लोग कहते हैं तो हमारे भी चेत हो जाता है, कभी कभी बातें मिलती तो मेरे भी चेत हो गई, बड़ा लाभ होता है। आपको पता लग रहा है कि नहीं लगता, आप जाने। मैं तो जानता हूं कि ऐसे ठीक तरह समझ कर किया जाए तो बहुत विलक्षण अंतर पड़ता है, बड़ी विचित्र शांति मिलती है। पता लगेगा जब शोक चिंता भय उद्वेग का काम पड़ेगा, घाटा लगे, कोई मर जाए, कोई अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, ऐसे समय में पता लगता है कुछ। और वो आता है अपने कल्याण के लिए, हित के लिए, महान हित के लिए आती है आफत। बड़ भागी है संसार में जिनके सामने आफत आई, और कोई तरह की आफत नहीं है, वो दुर्भाग्य है बेचारा। व्यक्ति ने उल्टी बात कह दी। जितना सुधार विपरीत अवस्था से होता है उतना अनुकूल परिस्थिति से सुधार नहीं होता। जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए उनके जीवन को देखो, प्रहलाद जी का जीवन इतना चमक उठा जो आज भी याद करते हैं। आज कहती हुए वो ये सृष्टि चल रही है, ब्रह्मा जी का दिन, इसमें आदि दैत्य हुए, उनका पुत्र था वो, तो बहुत वर्ष बीत गए। प्रहलाद जी के नाम में कारण क्या है? आप तो बहुत बड़ी 52 त्रास दी गई ऐसा सुना है हमने, कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट, 52 कष्ट दिए गए, ऊपर से नीचे फेंका गया, समुद्र में रखकर के पत्थर ऊपर चिड़ दिए गए, सर्पों से कटवाया, ऊपर हाथी छोड़ दिया, जहर पिला दिया, आग में रख दिया, 52 त्रास दी गई ऐसी। तो वो चमक उठा महाराज, सोना जैसे तपाड़े चमकता है, ऐसा प्रहलाद जी का जीवन दुनिया माता के लिए चमक उठा। तो कष्ट से दुख होता है क्या? अवनति होती है, पतन होता है। लोग मुझे कितना दुख होता है, कितना क्या है? जब तक वैसा न हो जाए। अभी एक बात याद आ गई, बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा हुआ था, मैं यहां से कलकत्ता गया था तो थोड़े ही दिन हुए थे, 1-4 घंटा इतना चावल ले जाओ, कीर्तन करो ले जाओ, कोई सी कीर्तन करो ले जाओ, ऐसा कोई 100-125 जगह कीर्तन के अंदर खोल दिए। तो खर्च तो लगता ही है, अगर सत्संग में से कई भाई गए थे, भाई किसी को सेवा करने का भाव हो तो जाओ, रुचि हो तो कई भाई सेवा करने गए, तो पीछे आए कैसा हुआ, कैसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उस बातें सुनाई। एक दिन गोविंद का जी आए, खुद वो मोटर लेकर घूमते थे सब केंद्रों में, तो रात्रि में लोग इकट्ठे हो गए, तो लोगों ने कहा आपने तो जिला दिया, जिले को जिला दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो गोविंद का जी ने व्याख्यान दिया, ये बंगला भी बोलते थे, तो बंगाली में दिया व्याख्यान। उसमें सुनाया कि देखो आप झूठी प्रशंसा करते हो, हमने यहां बंगाल में आकर जितना धन कमाया उतना धन तो आपका ही है, वो लगाया नहीं है हमने पूरा, वो लगा दें तब तो आपकी चीज आपको दी, फिर हम मारवाड़ से लाकर लगावे तो आप कह सकते हो धन लगाते हो, नहीं तो क्या कहते हो आप, हमने पूरा यहां कहीं भी नहीं लगाया, इस बार क्या उपकार किया। ये बात किसी ने सुनाई तो मेरे मन में ऐसी बात पैदा नहीं होती आदमी की, ये कही तो स्वभाव। और एक भाई ने बड़ी विचित्र बात सुनाई, उसने कहा कि मैंने हरिकृष्ण जी से पूछा, जो गोविंदा जी छोटे भाई थे, उनसे पूछा कि ये कितना दिन काम चलाओगे ऐसे, तो वो हिम्मत थी कि नहीं इसका, मैं ठेका नहीं ले रहा, उत्तर को बढ़िया दिया, कि जब तक इन मांगने वालों की दशा हमारी नहीं हुई है तब तक फिर ये मांगे हम भी मांग लेंगे। ये बात है भाई, देने का रस आ जाता है, अच्छे भाव का अनुभव हो जाता है, वो छोड़ नहीं सकता। फिर रात दिन लोह में लगे वो क्या समझे इस बात को, कैसे समझे? वो धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात हत्या करने को भी नहीं चूकते महाराज। ये बड़े बड़े डाकू हत्या कर देते हैं मनुष्य की। वृंदावन में एक मुर्दा मिला, उसके छाती पर एक पुर्जा था, उसमें लिखा था कि उसको मैंने मार दिया, छाने के पैसे मिले। ये सुनाते थे लोहिया जी, समुद्र चौपाटी में घूमते हुए चौपाटी आगाड़ी घूमते थे, तो एक आदमी आया उसके पास, मंगल पैसा आए थे पास में, पैसा नहीं है, देखा देखे पैसा नहीं आया, मारे थप्पड़ पैसा लेकर नहीं आए। अब ये आंख पता है ना सुनाई थी, अब पैसा लेकर आवे लुटावे तब तो ठीक, अब उनको समझाओ दान में बड़ा रस है बड़ा आनंद है मानेगा? बिना पैसे क्यों आ गया बताओ, ये कसूर? नारायण 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 कैसे समझे भाई बाब? उस मिठाई को वही जानता है जिसने उसको चखी है, जो क्या पता। नारायण 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 पूर्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय,
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 24 सितंबर 1981 को प्रातः 8:30 जीवन विहार बम्बई में दिया गया। राम राम राम।
श्रीमान नारायण इधर से और दिखेगी, इधर से और दिखती है, इधर से और दिखती है, तो दृष्टि कौन है ना, हमारा दृष्टि का कौन, इस कोण से देखते हैं, इस कोण से देखते हैं, इस कोण से देखते हैं, ऐसे तीन दिखती है। ये तत्व एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। भक्ति वाला कहते हैं भक्ति ही ठीक है, तो भक्ति कौन वाला ऐसे कहते हैं? ज्ञान कौन वाला कहते हैं? ज्ञान ही ठीक है बस, और नहीं ठीक है। मैंने संतों का संग भी किया है, संतों की वाणी भी पढ़ी है, राम प्रताप और राम प्रकाश जो ग्रंथ है ना महाराज की, ये मैंने पढ़े हैं, कल ही पढ़े, ठीक है, चेतावनी पढ़ी है रामचंद्र जी महाराज, पानी पढ़ी रामचंद्र जी महाराज की, पानी पढ़ी पढ़कर देखा, तो उनकी एक बात ही, एक ही बात है कि राम नाम है, सार चीज इतनी है, संपूर्ण वाणी में सार इतनी है कि राम नाम से ही सब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक राम राम से सब हो जाएगा। पर बताइए ऐसी है कि राम राम में लग जाओ रात और दिन और सब मिल जाएगा आपसे आप ही। तो साधन एक बता दिया और सिद्धि बता दी। अब इस राम नाम से तीनों बातें हो जाएगी। मरने का भय नहीं रहेगा, जीने की इच्छा नहीं रहेगी, करने की चिकित्सा और ज्ञान जानने की इच्छा नहीं रहेगी। वो तत्व मिल जाएगा बिल्कुल एकदम ठीक। संतों की वाणी से एकदम स्पष्ट है, साफ। वही अगर विचार किया जाए, तत्व का खूब गहरा विचार किया जाएगा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो जानते ही, स्वरूप को जानते ही न करने की इच्छा रहेगी बाकी, न पाने की इच्छा रहेगी, न मरने का भय रहेगा, न जान जीने की इच्छा रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। ऐसे ही अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल दुनिया का हित ही करना है। भजन ध्यान जप कीर्तन दान पुण्य तीर्थ व्रत अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल दुनिया के हित के लिए करना है। ये पूर्ण कर लो तो चारों इच्छा मिट जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने सब दृष्टियों को खूब मेहनत करके देखा है, इस पर खूब विचार किया है और खूब प्रश्नोत्तर किए हैं अच्छे अच्छे जानकार पुरुषों से, खूब पूछा, गहरा उत्तर कर पूछा, जल्द उत्तर मिले हैं। बहुत शांति, बड़ा भारी आनंद। अब आपकी जिसमें रुचि हो लग जाओ, अगर राम नाम में रुचि है तो वे रात और दिन गिनो मत। भूखे हैं कि प्यासे हैं कि सुख है कि दुख है कि आराम है तकलीफ है, कुछ मत गिनो। राम 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 किए जाओ। भोजन में मिलेगा, कपड़ा में मिलेगा, स्थान में मिलेगा, जो दुनिया को मिलता है उसमें आपकी कमी नहीं रहेगी किंचित मात्र। आपका काम केवल राम 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 करना है, सब हो जाएगा। ऐसे गहरा विचार करो कि वास्तव में तत्व क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, है क्या चीज, है वास्तव में क्या चीज है। पीछे पड़ जाओ, पुस्तकें भी देखो, पूछो भी, स्वयं विचार करो, जहां क्या है ये तत्व को मिला ऐसा सब काम हो जाएगा। ठीक प्रश्न, तीनों पूर्ति हो जाएगी। इसमें संतों ने बताया है तो संतों की बात सुनकर के मतभेद होता है मन में, ये महाराज तो ऐसा कहते हैं, ये महाराज ऐसा कहते हैं। अब शंकराचार्य पूछो तो ज्ञान की बात बताएंगे, श्री रामानंदाचार्य पूछो तो भक्ति की बात बताएंगे। अब दोनों को आपस में कई जगह महाराज बड़ी भिड़ंत होती है, इतनी बड़ी भिड़ंत है कि ज्ञान मार्ग वाले भक्ति मार्ग वालों को अज्ञानी मूर्ख ठहरा दें और भक्ति मार्ग वाले हैं ज्ञान मार्ग को मूर्ख ठहरा दें। गीता पट्टी का दोनों मैंने देखी, अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीतान बुद्धि पार तामसी। इसलिए से अज्ञान अद्वैत जो मानते हैं वो तामसी बुद्धि है, और जो पूजन करते हैं भगवान का और सेवा करते हैं वैष्णव, उन्हों कह दिया है हेतु कृष्ण वधे कस्मिन कार्य सक्तम अहेतुम अतत्वार्थव अल्पंश तत्तामस बुदा गए। ये मूर्ति पूजन सब तामस बताइए। मैंने अपने थोड़ा ही देखा, मैंने इन ऋषियों के आचार्यों के मतों को देखा और बात क्या है, ये कहां कह रहे हैं, किस जगह बैठकर क्या कह रहे हैं, ऐसे अपनी बुद्धि से मैंने ख्याल किया तो सब ठीक कहते हैं। एक अंश ठीक है वो बताऊं आपको, सार जो ये कहते हैं कि ऐसे करने से होता है वो अंश तो है ठीक, और खंडन अंश ठीक नहीं है। खंडन अंश को छोड़ दो, मंडन अंश का पालन करो, काम हो जाएगा पूरा। जो वास्तव में महापुरुष पूर्ण हुए वे, कवियों की लेखकों की बात नहीं कहता मैं, संत महात्मा हुए हैं उनकी बात के अनुसार आप अपना जीवन बना दो पूरा का पूरा तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और वे भी खंडन करते हैं, उस खंडन में लग जाओ तो कुछ मिलने का नहीं है। ये सार निकाला वो एक निष्ठा के लिए, एक निष्ठ होने के लिए कभी विचलित न हो, विचलित कोई से नहीं करेगा। उन्होंने किया जो बड़ा ठीक किया, उन्होंने किया बैठी नहीं देखता मैं, साधक के लिए क्या लेना चाहिए वो बताता हूं। उन्होंने किया बहुत ठीक, राम नाम के ऊपर ही बता दिया और सब सब सूटा है, सब असत्य है, कोई काम का नहीं है। साधक निर्णय तो कर नहीं सकता और कहना मान सकता है, जो मैं श्रद्धा है उनकी वाणी मान लेगा तो बस वो एक मन लग जाओ तो ठीक हो जाएगा। खूब सच्ची बात है, कई वर्षों पहले रामकिशोर जी महाराज वहां आए थे ऋषि के स्वर्गाश्रम में, फिर जोधपुर चामास गया था, फिर अब संत अब बड़े मैन थे। तो उस समय मैंने कहा था क्या बात है, इनमें जो तीर्थों का खंडन है, मूर्ति का खंडन है, पूजा का खंडन है, क्या मतलब है। गंगा जी खंडन, तो खंडन का तात्पर्य नहीं है उनका, उनका तात्पर्य एक निष्ठ होने के, एक निष्ठ करे तो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोच जही जीव उर् न तो धरे तही भी प्रगट हो, जहां निश्चय करेगा वही प्रगट हो जाएंगे। तो वो निश्चय मन लागो बहु मार्ग, कई मार्ग में लग जाएगा तो कोई सही काम नहीं, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जा। तो उनको एक जगह होकर ठीक करना चाहिए। इस बात से संतों ने कहा भैया तुम क्यों भटकते हो, बस ये करो बोलो। अब जिसके जच जाए कि राम नाम में ही है, लोगों को कोई जरूरत नहीं किसी की भी, तो बिल्कुल जरूरत नहीं उसके लिए, एक राम नाम से हो जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात। ऐसे किसी बात में तत्परता से लग जाओ तो एक निष्ठ बनाने में तात्पर्य है, खंडन में तात्पर्य नहीं है। ना द्वेष है, ना राग है, ना वैर है, ना विरोध है, कुछ नहीं, एक निष्ठ बनाने में मत करो। इस बात से वाणी के अनुसार एक निष्ठ बन जाओ, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण गदन मत मत सुना होगा, इस बात क्या है, परंतु जैसे हलचल में थी तो बिलो न करने से घी आ गया, नहीं चले क्यों
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 22 सितंबर 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद छत्री बाग राम द्वारा इंदौर में दिया गया। राम राम राम।
परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सके, तो सुगमता तो इसलिए कहता हूं कि आपने कठिनता मान रखी है, तुमने तो सुगम से ही सुगम है। सुगम तो वो कही जाए कि जो हो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो उसको तो सुगम कहते हैं। करना कुछ नहीं है, इसमें सुगम क्या कहें उसको, जो बात जैसी हो रही है उसको वैसे ही मान लेना है, समझ लेना है, इतने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है जिसका वेदों में शास्त्रों में पुराणों में बड़ी भारी महिमा है। संत महात्माओं ने जिसकी महिमा गाते गाते अंत नहीं पाया है और दाबे ही रही कहते ही गए, ऐसी जिसकी महिमा है वो तत्व स्वतः प्राप्त है, उस तरफ दृष्टि न डालने से ये दशा हो रही है। खूब आप ध्यान देकर के देखें कि संसार और शरीर इसका स्वतः वियोग हो रहा है कि नहीं। आज दिन तक की उम्र आ गई, वो आना कहते हैं, वो गई इतनी तो, और बाकी कितने इसका पता नहीं, परंतु प्रतिक्षण जा रही है इसमें संदेह नहीं है। इसमें कुछ करना है क्या? जितना आपका संसार के साथ संयोग है वो प्रतिक्षण वियोग में जा रहा है। ये बात यूं ख्याल में आई है कि नहीं? अभी यहां कहते 5 बजे से सत्संग होगा, तो क्या अब 5 बजे हैं? 5 में ऊपर चला गया समय, तो ये समय अब 5 का पीछा आ सकता है क्या? आज का ये दिन का 5-5 का समय पीछा सकता है क्या? जा ही रहा है। उस समय में जैसी अवस्था थी शरीर की, मन की, इंद्रियों की, वो अवस्था अब नहीं रही, अपने से वियोग हो गया है। तभी तो बालक से जवान और बूढ़े हो जाते हैं। अगर वियोग न होता हो तो जवान कैसे हो गया बालक से? रोया तो हरम बदल, हर समय बदलता है, ये मानना ही पड़ेगा। वो एक दिन में, एक क्षण में, एक बदल में बदला नहीं है, हरदम बदलता है, और जितना बदलता है उतना हमारे से अलग हो रहा है। हम बदले नहीं हैं, आप हम जो है वही हैं जो बालकपन में थे। हमारा तो वैसे ही रहने का अनुभव है, और मन इंद्रिय शरीर के बदलने का भी हमें अनुभव है। अपने तो रहने का अनुभव, हम तो वही है, और शरीर मन इंद्रियां संसार सब बदलता है, इसका अनुभव हमारे को है। अब ये अनुभव है तो ये बदलने वाला है, आपके पास रहने वाला नहीं, इससे तो विमुख होना है। और जो आप है उसमें स्थित होना है, योग स्थिति स्वतः आपकी है उसमें। मानते हो मैं वही हूं जो है उसमें स्थित होना है, और जा रहा है जो आपसे वियुक्त हो रहा है उसे वियुक्त होना है, विमुख होना है, उसके साथ नहीं रहना है। भाव से हम इसके साथ हैं, ये भाव है गलती का है, इसको छोड़ देना है। इसमें कठिनता सुगमता क्या है? जो वियुक्त हो रहा है उसको वियोग होने दे, और जो रह रहा है उसको रहने दे। अपने को क्या करना है? स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक। अब इससे छूटना है, वो हो गई मुक्ति, और है उसमें स्थित होना है, ये होगी भक्ति। अब आपको पूछूंगा, आप कठिनता वाले परेशान प्रश्न रखो, बोलो। काम में क्या लेना है? खूब ध्यान देना, काम में लेना किसको कहते हैं बताओ? बताओ भाई, काम में लेना किसका नाम है? मनुष्य योग को न मानना, शरीर का अपना संयोग नहीं है ये मानना, इतनी मानना। आपका शरीर का संयोग है क्या? पहले ये बता दो कि संयोग है तो उसी बालकपन के साथ आपका संयोग था, आपने जानकर वियोग किया है क्या शरीर से, का बालकपन से किया क्या है? किए बगैर रह नहीं सकते, वो तो होता है। तो बालक उसन में वियोग हो गया तो अभी संयोग रहता है। मैं बोला उस समय जितना संयोग था अब उतना संयोग है, ये तो वियोग हो ही रहा है। उस संयोग को न मानना, इतनी ही बात, पूरी इतनी ही बात है, इतने में सब पूर्ण हो गए। केवल संयोग की सत्ता मानी हुई है यही बंधन है, इसके सिवा कुछ बंधन नहीं। बोलो और बोलो, काम में लाना क्या है बताओ। हाँ तो कसर क्या रही?
कसर की माने भाव में तो कोई समझ में आ रही
नहीं, भाव में नहीं समझ में आओ, बताओ कि यह समझ में नहीं आ रही, बताओ मेरे सामने कैसे से कैसे काम कर रहे, कदे ये समझ में नहीं आ रही। अब ठीक है, अब देखो आपके ये वहम पड़ा हुआ है कि इसमें समय लगेगा, ये बात इतनी सुगम कैसे हो जाएगी? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी तो समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे आ जाएगी? तो ये बात काम में नहीं आती, काम में नहीं आती, ये सीख लिया आपने बात। और ऐसे कैसे हो जाएगी ये मान ली, है वो बात हो रहा है क्या? वो तो है ही हुई होना क्या है? अब आप लगा दी कि ऐसा लक्षण होना चाहिए साहब, ऐसा मन होना चाहिए, ऐसी इंद्रियां होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इतना ऐसा त्याग होना चाहिए, ऐसा वैराग्य होना चाहिए, ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए, ये सब आपने मान रखा है। सच्ची बात वो है नहीं, ऐसा कह सकती हो? मैं कहता हूं वो उसकी बात तरफ आप मत देखो, अभी एक बात को आप मान लो, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, वो होगा, सब हो जाएगा, आप सब हो जाएगा। खेती करने वाले केवल हालत चला करके और घर पर आ जाते हैं, पूछे खेती हो गई, हर सा खेती हो गई, जेठ असल के मैंने खेती हो गई, और काटी और मिंगसर में जाते हुए कहते खेती हो गई। खेत करने वाले जानते आप उनको पता क्यों भाई? ठीक है ना, केवल हल पा करके आया हो, खेती खत गई, खेती होगी, खेती पूरी तो तब होगा जब घर में धान आ जाएगा, परंतु हल चला लिया, वो हल चला करके संपूर्ण पूरा खेत बा दिया इसी तरह से, बाकी नहीं रात खेती हो गई, अब हो जाएगा, अब थोड़ी रक्षा करते रहो, खेती करना बाकी नहीं है, रक्षा करो, निदान करो, उनके सदा जाओ, बड़ी रखो। अब इतनी बात है, ये बात है तो झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, गड़बड़ी मत करो, नहीं तो इनकी रक्षा नहीं होगी। खेती में कोई संदेह नहीं है, रक्षा हुए बिना वह धान पैदा नहीं होगा। वो पशु खा जाएंगे। तो जितना आप समझो मैं लेता हूं उतना आप खोते हैं, अपना महान नुकसान करते हैं। मृत्यु इतनी स्पष्ट हो रही है बात, हमने समझा कि कितना ले लिया हमने, ऐसे ही समझेगा हमने ये कंबल आपसे ले लिया, अच्छा हुआ बंबई गए कंबल मिल गए, पर कितना तुम्हारा पुण्य नष्ट हुआ है इसका पता नहीं। वो खोआ है मन में आता ले लिया, ऐसे रुपया मिल गया माने मिल गया, अरे मिल गया गया हो नष्ट हो गया तुम, तुम्हारा त्याग वैराग्य संबंध नहीं था उसको पकड़ करके संबंध कर लिया तो नई आफत एक कर ली। आपने 10,000 रुपया कमा लिया तो 10,000 हो गया, उनमें झूठ कपट बेईमानी कितनी की, अरे आज मर जाओ 10,000 में से कोड़ी साथ चले नहीं, और झूठ कपट बेईमानी कोड़ी एक पीछे रहे नहीं, इसमें संगत बोलो। अब कह रहे थे काम में नहीं आवे, काम में क्या नहीं हुआ, काम तो आई हुई है, अन्याय छोड़ छो कैसे जीवेंगे, तो पाप करके जीवो जिगरे बता शुद्ध अवस्था मर जाओ हज गया, मरना तो पूछे ही पड़ेगा ही, पाप करके मरोगे तो थोड़े पवित्र रहते भी मर जाओ, अन्न बिना मर गए, अन्न वस्त्र मिला नहीं इस बात में मर गए, अन्न वस्त्र क्यों नहीं मिला, झूठ गौट बेईमानी नहीं की इस बात में नहीं मिला, और झूठ गौट से अन्न मिल जाता तो केवल और जी जाते, तो केवल पाप के लिए जीते हो गया, पाप थोड़ा रह गया तो ज्यादा बढ़ा ले जीवन के दिन, तो ये मतलब है। एकदम सीधी बात, इस बात में संदेह मत करो, इस मांगने में ठीक है, अब ख्याल ये रखना है कि भाई अन्याय नहीं करना है, कहते आजकल काम नहीं चलता, कितना दिन चलाओ 10, 20, 20 वर्ष, 50 वर्ष, अंत में बंद हो गई, तो पाप करके पैसे बंद करो तो पहले पहले बंद कर दो, कहते हो गया पहले, अरे हो गया जो कहते निकालो पाप नष्ट करो, अब नया तो मत करो, अरे थोड़ा कमाओ अरे थोड़ा खर्च करो, थोड़ा खर्च करने की बात है ना, हाथ में हाथ से गए थे करो तो, और फिर हाथ की बात संसारी कानून और लोगों को डरता और वो में तो ना ताबे आनी मुश्किल है, खर्चे ही कम करो, अच्छा खर्चे ही हम तो कम करें, निर्वाह मात्र करेंगे, इतना तो हो जाएगा, ऊन फैल नहीं होगा, इतनी बात। Ram 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 Ram
Ram Ram Ram। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 24 सितंबर 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद कालबा देवी रोड बम्बई में दिया गया। राम राम राम।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
Hare Krishna Hare Krishna
तो विचार में से ये बात आती है जो मिटने वाली होती है वस्तु वो मिटने वाली ही होती है, उसका अभाव पहले से ही है। जैसे शरीर के साथ हमने संबंध मान रखा है कि ये मेरा है तो अब मैं ही हूं, शरीर को मैं मान लेना तो शरीर को मेरा मान लेना, ये संबंध रहने वाला नहीं है। ना शरीर मैं हूं ये रहेगा, ना शरीर मेरा ये रहेगा। इस बात को पहले अपने विचार कर लेंगे, बात ठीक है। घर के साथ अपना संबंध है, मेरा घर है, तो ये घर मेरा पहले नहीं था और फिर ये मेरा घर नहीं रहेगा। मानी ये संबंध बीच में माना हुआ है, तो माना हुआ संबंध उसको न मानने से मिट जाता है, इतनी सुगम बात। सोचने बात यह है कि ये संबंध था और अगर रहेगा क्या, ये सोचने का खूब विचार करने का है। तो ये केवल माना हुआ बीच में संबंध है, तो संबंध में उनको संबंध मानना ये तो है गलत, और संबंध के अनुसार सेवा करना ये है सही। एक बात तो इसमें बढ़िया सही है और एक इसमें गलत है। तो संबंध के अनुसार सेवा कर देना, उसका प्रबंध कर देना, तो वो संबंध है। इतना काम तो हमारा है, परंतु सेवा तो करना नहीं, उससे कुछ चाहना, संबंध को बनाए रखना, ये गलती है। इस गलती का नाम बंधन है। ख्याल में आया कि नहीं? बोले मानो संबंध के अनुसार सेवा कर देना, जैसे माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, स्त्री है, पुत्र है, ये संबंध है ना। तो संबंध के अनुसार सेवा कर देना और उसे सेवा न चाहना, क्योंकि तो सेवा चाहने से भी राजी नहीं है। तो स्वभाव में राजी हो जाए, परंतु अंत में सेवा देने से भी राजी नहीं है, सेवा लेने से भी राजी है। तो संबंध है तो उनको राजी रखने के लिए संबंध है, उनके आशीर्वाद लेने के लिए संबंध है, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। और हम उनसे लेने के लिए संबंध रखेंगे तो बंधन हो जाएगा। इसमें आपकी गति क्या वो बताओ। ये बात आपको ठीक दिखती है कि गलत दिखती है? कायदा रख करके नहीं कहना है कि ये कहते हैं तो कैसे कह देंगे ठीक नहीं है, ऐसे डरना नहीं। ठीक ठीक दिखता हो वैसे बताओ। संसार मात्र का संबंध संसार की सेवा करने के लिए है, लेने के लिए नहीं। लेने में क्या होगा कि लैंगिक आशा तो भीतर रह जाएगी और संबंध रहेगा नहीं, वो जन्म मरण रहेगा। कारण गुण संगो से सदस्य उद्योग ने जन्म सु और अपने लिए संबंध हम नहीं रखेंगे, सेवा ही करेंगे तो हमारा बंधन नहीं होगा, किसी की ताकत नहीं हमारे बांधे हुए, बन सकते ही नहीं। तो ये विवेक मनुष्य को हो सकता है, पशु पक्षी को नहीं। इस बार तुम्हें आपस में मोह भी कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मनुष्य इस बात को जानता है कि ये संबंध तो आगंतुक है, हरदम रहने वाला नहीं है। थोड़ा संबंध है उसमें कोई लड़ाई और करता है तो आप घरों की स्त्रियां कह देती है, छोटे बहन भाई आपस में लड़े तो भाई से कहते हैं भाई से क्यों लड़े, बहन से क्यों लड़ता है, बहन तो अपने घर जाने वाली, ये तो अपने घर जाने वाली, इसे क्यों लड़ता है, ऐसे संसार तो अपने घर जाने वाला है, इसी में लड़ते हो, ये वो आपके साथ रहेगा। अब भाई तो अपने घर जाने वाली है, घर जाने वाले लाड प्यार से गहना कपड़ा पहरा करके सीख दे दो, जाओ भाई साहब पधारो। ऐसे संसार को तो आदर से विदा कर दो, कैसी मौज की बात। संबंध विच्छेद उसी का होता है जो वास्तव में संबंध होता नहीं, मान लिया जाता है।